मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 21 अप्रैल 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी के सितंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं मजहर अहमद खान, आप लखनऊ से हैं। हरि ओम नटेरिया, आप सोनकच्छ मध्य प्रदेश से हैं। प्रभात कुमार राय, सिवान बिहार से हैं। हरि कृष्ण शरण, मोतीपुर मुजफ्फरपुर से हैं। और प्रदीप कुमार यादव इलाहाबाद से हैं। तो मजहर अहमद, हरि ओम, प्रभात, हरि कृष्ण और प्रदीप, आप 5 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों एक खबर है और थोड़ी सी दुखद खबर है और वह यह कि हमारी 4th बैच में एक स्टूडेंट रही हैं पूजा राजपूत। खबर मिली है कि उनके दादा नहीं रहे और पूजा अपने दादा जिसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी जैसा कि मुझे पता लगा है। तो मित्रों मैं आप सबकी ओर से एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से मैडम डॉक्टर प्रीति की ओर से और अपनी ओर से उनके दादाजी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से हम सब प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें अपने शरण में स्थान दे। और साथ ही यह भी प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। और हम सब पूजा से भी यह वायदा करते हैं कि हम सब की भावनाएं उनके साथ हैं, उन्हें अपने को तार्किक रूप से मजबूत बनाकर इस स्थिति को जल्दी से जल्दी संभालने की कोशिश करनी चाहिए। मित्रों ये जीवन का क्रम ही ऐसा है कि कोई जाता है तभी कोई किसी को आने की अनुमति मिलती है और निश्चित तौर पर हम सब भी उसी प्रतीक्षा की सूची में हैं। हम चूंकि थोड़े बाद में आए हैं तो इसीलिए लिस्ट में हमारा नाम थोड़ा पीछे है। एक समय ऐसा आएगा जब हम इस लिस्ट के सबसे पहली पंक्ति में होंगे और फिर हमारे पीछे एक नई पंक्ति तैयार हो चुकी होगी। और लाइफ इज लाइक दिस, जीवन इसी तरीके से चलता है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर और आज मैं जानबूझकर लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट को थोड़ा सा छोटा रखना चाहूंगा क्योंकि आज मेरे पास खासकर इंटरव्यू के बारे में बात करने के लिए ढेर सारी चीजें हैं। मित्र मेरे पास इस बीच में जो ईमेल आ रहे हैं उनमें मुझे 2 तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। खासकर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो फील्ड में गए, सोसाइटी के बीच में गए और उन्होंने कुछ कोशिशें की, चाहे वो ऑडियो सुनाने की कोशिशें हों, चाहे उनमें अनुशासन लाने की बात हो, चाहे मैनर्स डेवलप करने की बात हो या सोशल वर्क से ही रिलेटेड बातें क्यों ना हों। दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स बहुत उत्साही हैं और कहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दूसरी ओर कुछ स्टूडेंट बहुत ही निराशाजनक प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें एक तरीके से थोड़ी सी बेइज्जती सी महसूस हुई, शर्म सी भी महसूस हुई, असफलता मिली, उन्हें दुख हुआ। तो ये दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं मुझे सुनने को पढ़ने को मिल रही हैं। मित्रों मैं एक बात आप लोगों से बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि जो दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं हैं ये दोनों ही प्रतिक्रियाएं जीवन के सच हैं। और याद रखिए कि किसी एक वर्ग का सच नहीं है बल्कि दोनों ही वर्गों के सच हैं। जिन्हें आज बहुत सफलता मिल रही है, जिसको लेकर के वे बहुत उत्साही हैं, हो सकता है कि अगले चरण पर जब अगली बार वो इसी तरह की कोशिश करें दूसरे ग्रुप के साथ तो उन्हें बहुत बुरी तरह से असफल होना पड़े और वो निरुत्साहित हो जाएं। ठीक इसी तरह से जिन्हें अभी असफलता मिल रही है, जो निराश हो रहे हैं, हो सकता है कि वो अगली बार अगर लगे रहे फिर से उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिल जाए और वो बहुत ज्यादा उत्साह से भर जाएं। दोस्तों मान करके चलिए कि जब आप किसी से भी कुछ बदलने की बात करते हैं, चाहे वो उसकी सामान्य सी चीज क्यों ना हो, उसको वह ऊपरी तौर पर तो स्वीकार करता है क्योंकि जब आप उसे कोई बात बता रहे हैं तो अच्छी ही बात बता रहे हैं और उसको भी सुनकर अच्छा लगता है। और अच्छा न भी लगे तो आपके सामने वह उसे नकार नहीं सकता। अगर आप किसी को कहते हैं कि भाई देखो खाना में, खाने की प्लेट में जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, तो यह बहुत सही बात है, लेकिन वह छोड़ता है या नहीं छोड़ता है यह बिल्कुल अलग बात है। उसका कारण यह है मित्रों कि मान करके चलिए कि किसी को भी बदल पाना सबसे कठिन काम होता है। दुनिया का जो सबसे कठिन काम है वह है व्यक्ति को बदल पाना, चाहे वो व्यक्ति एक हो, चाहे दो हो, चाहे समाज हो, चाहे पूरा देश हो, चाहे फिर दुनिया ही क्यों ना हो। मित्रों हम खुद अपने आप को नहीं बदल पाते, और हमें चाहिए कि हम अपने बारे में भी विश्लेषण करें कि जब हम निरुत्साहित होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी से कहा कि देखो गाड़ी चलाते समय हॉर्न मत बजाया करो, लेकिन वो बात नहीं मान रहा है क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है, आसान भी नहीं है उस आदत से मुक्त हो जाना। लेकिन हां यदि कोई मानसिक रूप से सतर्क हो जाएगा, इस वाक्य को बार बार अपने दिमाग में दोहराता रहेगा, तो हॉर्न बजाने की संख्या धीरे 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 कम होती जाएगी और फिर वो अचानक खत्म हो जाएगी, अचानक नहीं मतलब धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। अगर मैं सोचूं कि वो अचानक ही हॉर्न बजाना बंद कर देगा तो मुझे लगता है कि शायद मैं भी कुछ गलत अपेक्षा कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी से कहा कि तुम प्लेट में जूठा मत छोड़ो और उसने स्वीकार कर लिया, और मैं थोड़ी देर में देखता हूं कि वो प्लेट में जूठा छोड़ देता है। उस समय छोड़ना उसकी मजबूरी हो सकती है, हो सकता है कि उसने शुरू से ही प्लेट में इतना ज्यादा खाना रख लिया है लालच में, या गलत अनुमान लगाकर, जो भी कारण हो, या यही सोचकर कि यार कौन बार बार बफे की फिर से लाइन में लगे, एक ही साथ अपने प्लेट में रख लो ताकि बात बन जाए और बच जाएगा तो छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने उसके दिमाग में यह बात दर्ज कर दी है तो विश्वास कीजिए कि वो जब दूसरी बार प्लेट में खाना परसेगा तो उसके दिमाग में रहेगा कि मुझे जूठा नहीं छोड़ना है, और हो सकता है कि वो फिर भी जूठा छोड़े, लेकिन यह थोड़ा सा भरोसा रखे कि अब उसके जूठा छोड़ने की मात्रा पहली बार की तुलना में थोड़ी सी कम जरूर होगी। तो मित्रों जो हम सब, आप सब या समाज में और जो दूसरे लोग हैं इस तरह के जो काम करते हैं, उन्हें जीवन के इस सत्य को स्वीकार करके चलना चाहिए कि हमारे एक बार कह देने से कुछ नहीं होना है, वो तो बार बार कहना पड़ता है। ठीक वैसे जैसे कि चट्टान पर जब आप एक बार हथौड़ा मारते हैं तो चट्टान को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर एक हथौड़ा या दो हथौड़ा मारने के बाद आप चट्टान को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि कुछ इसमें दरार पड़ी है कि नहीं पड़ी है, कुछ उखड़ा है कि नहीं उखड़ा है, तो आपको निराश होने के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप चट्टान को लगातार मारते रहे तो हो सकता है कि 1000वें चोट पर द माउंटेन मैन माझी की तरह वो चट्टान टूट जाए। तो अब ये जो 1000वें चोट पर ये जो चट्टान टूटी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 1000वें चोट पर टूटी है तो वही चोट पर्याप्त थी। शुरू के 999 चोटों का भी उतना ही योगदान है जितना कि 1000वें चोट का है, क्योंकि उस वो तो परिणाम मूलक रहा, लेकिन परिणाम दिलाने में उससे पहले जो वार किए गए हैं उनकी भूमिका कतई कम नहीं होती। जैसे मित्रों कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमें देश की आजादी मिली, लेकिन उनसे पहले आजादी के लिए जितने भी लोग जुड़े रहे, कुर्बान होते रहे, 1885 में कांग्रेस बन गई थी और हमें आजादी हासिल करने में अगर हम 1885 से ले लें तो लगभग 62 साल लग गए, 47 में आजादी मिली, तो 62 साल के दौरान कांग्रेस में जो दूसरे लोगों ने भी काम किया है, ये नहीं कि उनके काम अर्थहीन है, उन्हें भी हम इतिहास में पढ़ते हैं। मित्रों सामाजिक परिवर्तन का काम यही इसी तरह से होता है, और यहां तक कि निजी परिवर्तन का काम भी इसी तरीके से होता है। इसलिए जब हम अपने अंदर भी परिवर्तन लाने की बात सोचते हैं, फैसला करते हैं, तो कभी भी ये ना मान करके चले कि हमने फैसला कर लिया और हमारे अंदर परिवर्तन हो जाएंगे। उसके लिए हमें लगातार सतर्क रहना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, और धीरे 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 फिर हमें अपनी आदतों से, उनसे जिनसे हम छुटकारा पाना चाह रहे हैं, कम करते करते छुटकारा पाना पड़ता है। मित्रों यह क्रम ही है, इसीलिए आप देखिए कि समाज उन लोगों को सबसे ज्यादा सम्मानित करता है, उन्हीं लोगों की मूर्तियां बनाता है, उन्हीं लोगों को पूजता है जिन्होंने समाज को बदला है, क्योंकि किसी को बदलना बहुत मुश्किल काम है। आप मेरे इस वाक्य पर जरा सोचने की कोशिश कीजिएगा, मेरे इस वाक्य को आप निबंध के अंतर्गत फूड फॉर थॉट मान ले। विचार करने के लिए ही मैं आपको एक वाक्य दे रहा हूं कि समाज उन्हें ही पूजता है, उन्हें ही सबसे ज्यादा सम्मानित करता है जिन्होंने समाज को बदला है, और जिसने समाज को जितना ज्यादा बदला है वह उतना ही ज्यादा पूजनीय है, उतना ही ज्यादा सम्मानीय है, उतना ही ज्यादा महान है, उतनी ही ज्यादा अमरत्व का वो हम आप कह लीजिए कि अधिकारी है। इस पर आप सोच करके देखिए मित्रों, और इसमें आप सबको ले लीजिए, आप ईसा मसीह मोहम्मद साहब, गुरु नानक साहब और जो धार्मिक व्यक्ति रहे हैं वहां से लेकर के राजा महाराजा, समाज सुधार, विचारक, जितने भी वैज्ञानिक जितने भी रहे हैं, सब पर आप अप्लाई करके आप देखिए तो आपको लगेगा कि सच में इसके केंद्र में जो बात रही है वह बदलने की ही तो बात रही है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फिर बदलना सचमुच कितना चुनौतियों से भरा हुआ काम है। इसीलिए आप सब जो भी थोड़ा बहुत इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बिल्कुल निराश मत होइए, लगातार अपने काम में जो जुटे रहिए, ये मानकर ही जुटे रहिए, क्योंकि ये क्षेत्र ही कुछ इसी तरह का है जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अपने काम में लगे रहें। फिर आपके मन में निराशा नहीं आएगी, आपके मन में असफलता का भाव नहीं आएगा, क्योंकि आप इस बदलने के सत्य को जान चुके होंगे कि बदलाव होता ही इसी तरीके से है। तो दोस्तों, लाइफ मैनेजमेंट में आज इतना ही। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। दोस्तों, कल के AIR न्यूज में जिन पर मैं बात करने जा रहा हूं, तीन सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम एक तरह से हेडलाइन के रूप में मान लें आज के इस डेली ऑडियो गाइडेंस में। पहला है उत्तराखंड के जो उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है राष्ट्रपति के बारे में। दूसरा है राष्ट्रपति जी ने जो सेवा क्षेत्र है, भारत का जो सेवा क्षेत्र है उसके बारे में जो कुछ भी कहा है। और तीसरे न्यूज में आपने देखा कि कैबिनेट ने काफी कुछ निर्णय लिए हैं उसके बारे में। तो इनके व्यावहारिक पक्ष पर, खासकर सिविल सर्विसेज एग्जाम को ध्यान में रखकर, मैं आपसे कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कल जो टिप्पणी राष्ट्रपति पर की है वह बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है। केवल इस मायने में ही नहीं कि यह बहुत चर्चित है और आज अखबारों में हेडलाइंस इसे मिली हैं, बल्कि इस मायने में भी कि सिविल सर्विस के लिहाज से यह आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कर रहा है। वैसे भी आप अगर अपने क्वेश्चंस पेपर को उठा करके देखें तो ज्यादातर मेंस के सेकेंड पेपर में राष्ट्रपति के बारे में कुछ न कुछ आता ही है। और सच पूछे तो जो भारत की संघात्मक व्यवस्था की जब बात होती है कि भारत में वाकई में फेडरल सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शामिल हो ही जाते हैं, क्योंकि जो राज्यपाल हैं वो राज्यपाल फेडरल सिस्टम में डिस्कशन में आते हैं और वो राज्यपाल जो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट भी उस हिस्से में आ जाते हैं। मित्रों, उच्च न्यायालय ने जो दो तीन जो महत्वपूर्ण जो बातें कही हैं उन बातों को मैं यहां आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप अब राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति के कर्तव्य और राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति, देखिए मैं तीनों चीजें फिर से दोहरा रहा हूं, उनके क्या राइट्स हैं, अधिकार क्या हैं। अधिकार बिल्कुल अलग होते हैं और कर्तव्य बिल्कुल अलग होते हैं। उनके अधिकार क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं और उनकी रियल पोजीशन क्या है, उनकी स्थिति क्या है संविधान में। इन तीनों के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए और सच पूछिए तो ये जो तैयारी आपकी हो बहुत गहराई में हो, नंबर एक, बहुत प्रैक्टिकल हो यानी कि बहुत व्यावहारिक हो और बहुत व्यापक भी हो, और नो डाउट तार्किक तो हो ही, क्योंकि संवैधानिक मामलों में, प्रशासकीय मामलों में फिर आपकी भावनाएं काम नहीं आती और न ही हमारी काम आती है सतही पकड़। आपकी पकड़ जो होनी चाहिए वो कंटेंट के आधार पर होनी चाहिए, बहुत डीप में होनी चाहिए और बहुत एनालिटिकल भी होनी चाहिए। दो टॉपिक जो खासकर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, मुझे लगता है कि हर साल आपको बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड प्रोवाइड करते हैं तैयारी के लिए, एक तो प्रेसिडेंट होते हैं और दूसरा जुडिशरी होती है। तो इन पर आप मान करके चलिए कि आपको भले ही ये जनरल नॉलेज ही क्यों ना हो, लेकिन आपका जो लेवल होना चाहिए वो किसी भी मायने में ग्रेजुएशन या आप कह लीजिए कि ऑनर्स डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। मित्रों, न्यायालय ने जो टिप्पणी की है उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनने के बाद उन पर आपको विचार भी करना है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ एंगल प्रोवाइड कर रहा हूं कि किस तरीके से इसी टॉपिक पर, इसी बिंदु पर जब आप सिविल सर्विस में अपने आंसर लिखेंगे तो कैसे उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल आप कर सकते हैं, कैसे उसकी एनालिसिस करेंगे या कैसे उसको विस्तार दे सकेंगे। तो मैं बेसिकली अब आपको राष्ट्रपति की ड्यूटीज, उनके राइट्स और उनका जो रियल स्टेटस है, स्थिति है, पोजीशन है, उसके बारे में नहीं बता रहा हूं। मैं बेसिकली आपको उन तरीकों के बारे में बता रहा हूं जिन तरीकों से आप सिविल सर्विस में अपने उत्तर को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मजबूत बना सकते हैं, इस लेवल पर ले जा सकते हैं कि आपको एटलीस्ट 55-60% मार्क्स मिलने की संभावना बन सके। और आप जानते हैं कि सिविल सर्विस में अगर आप जनरल स्टडीज में 60% मार्क्स ले आते हैं तो आप मान करके चलिए कि आप 100% मार्क्स ला चुके हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी जो न्यायालय ने की है और जिसको आज अखबारों ने हेडलाइंस और वर्ड्स के रूप में लिया है, हालांकि न्यूज में वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, थोड़ी सी तीखी टिप्पणी थी और वो टिप्पणी ये थी कि जो राष्ट्रपति है वो राजा नहीं होता है, राष्ट्रपति राजा नहीं होता है। मित्रों, ये जो राजा शब्द है, इस राजा शब्द की व्याख्या अगर सिविल सर्विस में मान लीजिए यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति राजा नहीं होता है, स्पष्ट कीजिए, तो अब आप इस राजा शब्द को लेकर किस तरीके से व्याख्यायित करेंगे, कहां से आप चीजें निकालेंगे। आप जानते हैं कि राजा नहीं होता है, राजतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र हमारे पास, हमारे सिस्टम में लोकतंत्र है, तो अब इस राजा को आप डिफाइन कैसे करेंगे। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी हाई कोर्ट ने जो राजा की टिप्पणी की है उसके पीछे एक दूसरा रीजन है। राजा जो अगर आप संदर्भ को लें, क्योंकि अन्यथा यदि हम राजा को संदर्भ से काट करके देखेंगे तो बिल्कुल वो दूसरा अर्थ देने लगेगा। संदर्भ से काट करके देखिए तो पहला अर्थ वो क्या देगा कि राजा वंशानुगत होता है, राजा का बेटा अगला राजा, फिर उसका बेटा अगला राजा, ये वंशानुगत होता है, राइट। पहली डेफिनेशन राजा की ये हो सकती है। जबकि भारत ने, आप उसकी उद्देशिका को उठा करके देखिए, सर्वप्रभुत्व संपन्न गणराज्य, तो गणराज्य की डेफिनेशन क्या है, गणराज्य की डेफिनेशन है कि जो देश का प्रथम व्यक्ति होगा, जो सर्वे सर्वा होगा, वह वंशानुगत नहीं होगा, निर्वाचित होगा। वहां डेफिनेशन ये दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यानी कि जो गणराज्य है, गणराज्य का जो प्रथम व्यक्ति है राष्ट्रपति है, वो निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा, स्पष्ट है कि वह राजा नहीं है। तो पहली डेफिनेशन तो ये बनती है, ये संवैधानिक डेफिनेशन हुई। सिस्टम के तहत डेफिनेशन क्या आ रहा है कि राजा वंशानुगत होता है, लेकिन जो हाई कोर्ट ने कहा है कि वह राजा नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहा है कि वो वंशानुगत नहीं होता। अगर आप संदर्भ से जोड़ करके देखेंगे तो इसका अर्थ बिल्कुल अलग निकलेगा। उनके कहने का मतलब है कि जैसे पहले जो राजा होता था सारी शक्तियां उसी के पास केंद्रित होती थी, जैसे हाई कोर्ट ने जिस संदर्भ में कहा होगा। और मुझे लगता है कि मैं, हालांकि अपनी तरफ से इसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन शायद मैं बहुत गलत नहीं होऊंगा, जो पहले जो राजा होते थे वो सारी शक्तियां उनके पास केंद्रित होती थी, एग्जीक्यूटिव हेड भी वही होता था, लेजिस्लेचर भी वही होता था, जुडिशरी भी वही होता था। आप उठा करके देख लीजिए हमारे उस समय के सिस्टम को, उसके मुंह से कुछ भी निकल गया खत्म, वो फाइनल है। इस संदर्भ में सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा है कि राजा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, जब हम राजा की बात कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो, अब हम अगर उसको कानूनन लेंगे, पहला तो कानूनन संवैधानिक दृष्टि से हो गया कि वंशानुगत नहीं है, दूसरा हम लेंगे तो यह है कि जो राष्ट्रपति जो कह देता है उसके शब्द अंतिम नहीं होते हैं। इसके बाद देखिए कि उसी की व्याख्या के अंतर्गत हाई कोर्ट ने फिर से यह क्लियर किया है कि उसके लिए गए निर्णय का भी कि भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उस पर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसका मतलब राजा ही सुप्रीम नहीं है, ऑल्दो ही इज द हेड ऑफ द सिस्टम, सरकार उसी की होती है, वे देश के प्रथम नागरिक हैं, बहुत सम्मानित भी हैं, इसके बावजूद उसके शब्द अंतिम शब्द नहीं होते। हालांकि संविधान में उसे बहुत से मामलों में विवेक से निर्णय लेने के अधिकार हैं, लेकिन फिर से हाई कोर्ट ने कहा कि उससे भी गलती हो सकती है। अब आप देखिए कि उससे भी गलती हो सकती है, यहां फिर एक हमें व्याख्या मिलती है और वो ये है कि पहले के लिए कहा जाता था कि राजा कोई गलती नहीं करता है, राजा से कोई गलती हो ही नहीं सकती है, पहले की ये व्याख्या है, ये मान्यता है। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, राजा से भी गलती हो सकती है, और उसको बैलेंस करने के लिए हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से उसको बैलेंस कर दिया कि इस तरह की गलती न्यायालय भी कर सकते हैं, न्यायाधीश भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि इस देश के संविधान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी व्यक्ति जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है, चाहे वो कोर्ट हिमसेल्फ क्यों ना हो। प्रेसिडेंट एंड कोर्ट, जुडिशरी दोनों इसमें शामिल हो गए हैं। जब ये दोनों ही रिव्यू के अंतर्गत है, फिर तो रिव्यू के पेरिफेरी से परे कोई है ही नहीं। तो मित्रों, ये राष्ट्रपति के बारे में जो ये टिप्पणी आई है, अब पूरे देश को एक तरीके से सोचने के लिए विवश कर रही है कि राष्ट्रपति की स्थिति क्या है और क्या किया जाए। और मैं आपको जो संवैधानिक स्थिति की जो मैंने बात कही मित्रों, संवैधानिक स्थिति सच में यह है कि राष्ट्रपति सही मायने में अपनी ओर से कुछ भी विशेष करने की स्थिति में नहीं होता है। उसके जो वीटो पावर, सो कॉल्ड वीटो पावर्स हैं, आप देखें उस पर भी पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होता है। वह सरकार के सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। और मैं अभी उन्हें स्पष्ट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन चूंकि मुझे राष्ट्रपति जी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में 5 साल काम करने का मौका मिला है, तो मैं बहुत से ऐसी घटनाओं का साक्षी रहा हूं जबकि राष्ट्रपति जी नहीं चाह रहे हैं कि ये हो, लेकिन उन्हें वैसा करना ही होगा क्योंकि संविधान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। उसमें राष्ट्रपति जी की भी कोई कमी गलती नहीं है और न कोई उनकी कमजोरी है और न कोई झुकने की बात है कि साहब वो सरकार के सामने झुक रहे हैं, क्योंकि जब व्यवस्था ही ऐसी है तो वो उस व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए सवाल कमजोर और मजबूत होने का नहीं है, सवाल यह है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म है, आप उस मैकेनिज्म के हिसाब से काम करने के लिए बाध्य होते हैं और संविधान का सम्मान हर एक को करना ही होगा। तो इसीलिए फिर से एक सवाल उठता है कि फिर ऐसी सिचुएशन में, अगर संविधान में राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति में रखा गया है, तो फिर उसका अपना विवेक रह कहां जाता है? यह भी एक प्रश्न उठता है कि क्या सच में वो अपने विवेक से काम करता है? तो वहां फिर से संवैधानिक स्थिति आती है कि नहीं, सच पूछिए तो जो कैबिनेट का विवेक है, या कह लीजिए जो सरकार का विवेक है, वही राष्ट्रपति का विवेक होता है। और राष्ट्रपति कहता ही है मेरी सरकार। तो मित्रों, इस तरह से आप देखेंगे कि मैं थोड़े से इसे उलझा रहा हूं, जानबूझकर उलझा रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अब आपको इसके आधार पर यह बताना चाहता हूं कि सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कैसे होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर आपने कभी घर में मठा निकालते हुए देखा या दूध को मथते हुए देखा हो कि किस तरीके से दूध को मथा जाता है और तब जाकर के उसमें से मक्खन निकलता है। तो जब आप प्रश्न करेंगे, उसके फिर उत्तर करेंगे, उत्तर के साथ के सामने फिर से आप प्रश्न खड़े करेंगे, प्रश्न से प्रति प्रश्न होंगे, फिर उत्तर आएंगे, उत्तर से प्रति उत्तर निकलेंगे। तो जब इस तरह से आप मथाई करेंगे, तब सही मायने में आपको उस चीज की समझ विकसित होगी, उस टॉपिक पर आपकी पकड़ बनेगी और दूसरे स्टूडेंट से आप अलग कुछ लिख कर आ सकेंगे। तो मित्रों, अभी 2 पॉइंट्स मैंने आपसे बताए हैं, एक तो राष्ट्रपति के बारे में और दूसरा संविधान के बारे में भी। जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है, और आप देखिए कि संविधान ने किस तरीके से बनाया कि किसी को भी सुप्रीम बनने ही नहीं दिया है, जिसको संविधान में हम अलग से सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं कि सबके पावर्स के अलग अलग है और उनमें एक संतुलन भी रखा गया है। सेपरेशन ऑफ पावर भी है और बैलेंस ऑफ पावर भी है। नोबडी इज डिक्टेटर अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरीके से खूबसूरत तरीके से संविधान को रचा है, बनाया है कि कोई भी व्यक्ति एक तरीके से तानाशाह होने का दावा नहीं कर सकता, जबकि अमेरिका में बहुत कुछ इस मायने में जो राष्ट्रपति है वो तानाशाह हो सकता है, उस तानाशाह की स्थिति में नहीं जैसा हम एक सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो काफी कुछ अपने पसंद से अपने मन से कर सकता है। मित्रों, इसमें जो तीसरा जो और क्वेश्चन बनता है वो यह है राज्यपाल के बारे में। न्यूज में हालांकि वो बात नहीं आई थी, लेकिन आपने देखा, आप अगर अखबार पढ़ेंगे तो अखबारों में दिया है कि हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि जो राज्यपाल हैं, राज्यपालों को एक तरीके से केंद्र के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए। राज्यपालों के अधिकारों पर उन्होंने एक टिप्पणी की है, मतलब उनको भी अपने विवेक से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया उसमें केवल एक ही दिन का फर्क था। नेक्स्ट डे के लिए निर्धारित किया गया था कि विधानसभा में जो पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, वो अपना बहुमत सिद्ध करेगी, लेकिन राज्यपाल के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति शासन एक दिन पहले ही लगा दिया गया। तो हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि एक दिन प्रतीक्षा की जा सकती थी, ऐसा क्या हो जाता? तो राज्यपालों को भी एक तरीके से सीधे, ऐसा नहीं कि केंद्र से निर्देश मिला, राष्ट्रपति से निर्देश मिला और उसी के बिल्कुल अकॉर्डिंगली काम करें। तो राज्यपाल के भी जो अधिकार हैं, राज्यपाल के भी जो राजनीतिक विवेक हैं, या राज्यपाल जो पूरी तरह से केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है, उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, उन पर भी आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए। मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने आपको केवल तैयारी करने के कुछ सूत्र दिए हैं, बाकी किताबें आप लोगों के पास हैं ही, लेकिन आपको चाहिए कि बहुत अच्छा मौका है। अखबारों में एडिटोरियल कमेंट्स आ रहे हैं, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, डिस्कशंस भी आ रहे हैं, डेली ऑडियो में भी मैं शामिल कर रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही अच्छा मौका है, या कह लीजिए कि बहुत अच्छी बारिश हो रही है जब आप अपने खेतों में धान के बीज छिड़क सकते हैं ताकि वो अच्छी फसल पैदा हो सके। ऐसे मौकों का हमें इस्तेमाल हमेशा अपनी तैयारी के लिए करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए पूरा का पूरा एक राष्ट्रीय डिस्कशन का वातावरण बना हुआ है। मित्रों जो दूसरा टॉपिक है वो राष्ट्रपति जी ने जो अभी कहा है सेवा क्षेत्र के बारे में। सेवा क्षेत्र के बारे में जो हमारा सर्विस सेक्टर है, आपको मालूम है कि तीन मूल सेक्टर माने जाते हैं, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा आपका हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसको हम उद्योग कहते हैं, और तीसरा सर्विस सेक्टर है। सेवा क्षेत्र भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अभी पूरे के पूरे हमारे जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 61% हो गया है, मतलब पिछले साल तक, पिछले फाइनेंशियल ईयर तक ये 58% था, जो बढ़कर 61% हो गया है। आप कल्पना करके देखिए कि केवल एक ही सेक्टर 100 में से 61% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है सेवा क्षेत्र, और यह लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें आप कह लीजिए कि एजुकेशन है, मेडिकल है, लीगल है, आईटी है, ये सारे के सारे पर्यटन है, सेवा क्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रपति जी ने जो दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट कही हैं, मैं उधर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, और इस पर फिर से कहूंगा कि इस पर आप खुद अपनी ओर से विचार करें। पहला तो उन्होंने कहा कि भारत को विकासशील से विकसित देश बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि सेवा क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाए। इस कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए कि सिविल सर्विस में सीधे सीधे यह प्रश्न दे दिया गया कि यदि भारत को विकसित देशों में शामिल होना है तो उसे सेवा क्षेत्र को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा, या सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा, स्पष्ट कीजिए आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए सिविल सर्विस में तो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर आप लोग विचार कीजिए। मुझे मालूम है कि मेरे बहुत से ऐसे प्रिय श्रोता हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, और ये इतना बेसिक भी सवाल है जिसके बारे में आप सब कुछ न कुछ जानते ही होंगे। फर्क केवल इतना ही है कि आप किस लेवल तक जानते हैं और अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से रख सकते हैं, बस फर्क इसी का है, और इसी फर्क से सारा फर्क पड़ जाता है, और लिस्ट में आप हैं या नहीं है वे निर्धारित हो जाता है। तो मित्र पहला प्रश्न यह है कि यदि भारत को विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना है तो उसे सेवा क्षेत्र को विकसित करना चाहिए। और दूसरा है कि उन्होंने कहा कि ये जो सेवा का क्षेत्र है इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बड़ा समावेशी विकास करता है और बड़ा समतामूलक विकास करता है। यह दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों मैं जानबूझ करके इसे अभी अपने डिस्कशन में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये थोड़े से लंबे डिस्कशन की मांग करते हैं, और फिर से वही बात है कि ये शब्द समावेशी और समतामूलक इतने आम शब्द हैं, लगातार आप लोग कब से सुन रहे हैं, और सच पूछे तो जब से नई सरकार आई है तब से समावेशी शब्द तो बहुत ही कॉमन शब्द हो चुका है, और आप देखते हैं कि पिछले साल 2015 के प्री में सीधे सीधे समावेशी शब्द के बारे में भी पूछा गया था कि इसका अर्थ क्या है। समावेशी को लेकर के मैंने अभी करीब पिछले महीने आप लोगों को योजना पत्रिका के कई आर्टिकल्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो उनको आधार बना करके आप बड़े आराम से इसे प्रूफ कर सकते हैं कि किस तरह से जो सेवा क्षेत्र है वो बड़ा समावेशी मूलक होता है और समता मूलक भी होता है। समता मूलक है कि मतलब उसमें सभी को समान रूप से अवसर मिलते हैं। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और तीसरी जो न्यूज थी दोस्तों वो कैबिनेट की बैठक को लेकर के थी। इसके बारे में मैं आपको केवल एक चीज, दो तीन चीजें बता सकूंगा क्योंकि समय उतना नहीं है। पहला तो यह है दोस्तों कि हर सप्ताह के बुधवार को कैबिनेट की बैठक होती है। आपको मालूम है कि कैबिनेट के हेड प्रधानमंत्री होते हैं, एक कैबिनेट सचिवालय होता है जिसके हेड कैबिनेट सचिव होते हैं, और जो कैबिनेट सचिव होते हैं वो आप मान करके चलिए सामान्यतः हमारे देश के जो सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट होता है, जो आईएएस ऑफिसर होता है, वो सामान्यतः कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाता है। और जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रालयों के बीच में पूरी तरीके से समन्वय का काम करते हैं, और वो कैबिनेट की बैठक करना, सारा कुछ इंतजाम करना, व्यवस्था करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कोऑर्डिनेशन करना कैबिनेट सचिवालय का काम होता है। ये बहुत ही पावरफुल सचिवालय होता है कैबिनेट सचिवालय, और कैबिनेट सचिव तो सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स भी आप कह सकते हैं। कैबिनेट भी बेसिकली दोस्तों सबसे पावरफुल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिकल मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हालांकि होते उसमें नेता ही है लेकिन वो मंत्री होते हैं, और जैसे ही वो मंत्री के रूप में भाग लेते हैं वैसे ही वो हमारे एग्जीक्यूटिव के हिस्से हो जाते, फिर वो लेजिस्लेचर के हिस्से नहीं रह जाते। हां जो कैबिनेट सचिवालय है, जब उसकी जो बैठक होती है तो उस समय वो निर्णय लेती है, तो उसके निर्णय चूंकि फिर लेजिस्लेचर के पार्ट बनते हैं तो उस रूप में उसका लेजिस्लेचर से भी संबंध होता है। मित्रों, आपने देखा कि अभी बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री ने निर्णय, प्रधानमंत्री ने बात की थी बाहर जाकर के, और उन सबको अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है। आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि यार अगर राष्ट्र प्रधानमंत्री की बात को कैबिनेट नकार देती तो, जैसे कि आपने पेरिस सम्मेलन के बारे में सुना, वो दिसंबर में हुआ था, दिसंबर में हमारे प्रधानमंत्री गए थे और वहां उन्होंने कुछ वायदे किए, और अब उनके द्वारा किए गए वायदे को जो भी साइन करना है कैबिनेट ने अप्रूव किया, तो आपके दिमाग में एक व्यवहारिक बात आ सकती है कि अगर नहीं होता तो, अगर कैबिनेट उसको अप्रूव नहीं करती तो। देखिए, डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग को थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो कैबिनेट होता है उसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, तो स्वाभाविक रूप से है कि कैबिनेट के मतलब प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को कैबिनेट अप्रूव करेगा। दूसरी बात यह है कि कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट निर्णय लेने से पहले ऑलरेडी कैबिनेट की बैठक होती है और उसमें प्रधानमंत्री अपने जो कैबिनेट के साथी होते हैं उनसे डिस्कस कर चुके होते हैं और वही जाकर के वहां फिर बात होती है और उसके अकॉर्डिंगली ही फिर उसको आकर के यहां अप्रूवल देना होता है। इसलिए व्यावहारिक स्तर पर कभी भी ये संकट नहीं आता कि प्रधानमंत्री ने कहीं बाहर जाकर के कोई वायदा कर दिया है और उसे कैबिनेट डिस अप्रूव करे, क्योंकि जो कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ, प्राइम मिनिस्टर ही उनका चयन करते हैं। मतलब वो एक ऐसी टीम है जिसके एक एक सदस्य को प्रधानमंत्री चयन करते हैं और जिसको भी प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं उसे जिस दिन भी चाहे वो अपने कैबिनेट से बाहर कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा मैकेनिज्म होता है कि कैबिनेट लगातार सरकार का सहयोग करती है, यानी कि प्रधानमंत्री के साथ सामंजस्य बनाए रखती है और आपस में फिर वो डिस्कशन करके इस तरह के निर्णय लेते हैं। तो मित्रों, ये कैबिनेट के बारे में था, तो इसीलिए जो कैबिनेट के डिसीजंस होते हैं उन्हें आप एक तरीके से सरकार के डिसीजंस मांग सकते हैं। मित्रों, मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं इंटरव्यू के बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा। दरअसल हमारे फोर्थ बैच के एक स्टूडेंट रहे हैं राजवीर शर्मा, जो अभी यूपीएससी आईएएस का इंटरव्यू दे करके आए हैं और उन्होंने एक लंबी लिस्ट मेरे पास भेजी है जो क्वेश्चंस उनसे पूछे गए। एक और भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने दूसरे स्टूडेंट के द्वारा, जो कृपेश कुमार हैं अहमदाबाद से, उन्होंने दूसरे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस भेजे हैं। डेफिनेटली मैं वो क्वेश्चंस आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा ताकि आप सब इंटरव्यू के बारे में अभी से समझ सकें, उसकी सच्चाई को जान सकें, लेकिन चूंकि आज उतना वक्त नहीं है कि मैं इत्मीनान से इसके बारे में चर्चा कर सकूं, इसीलिए मैं आज उन प्रश्नों को आपके सामने नहीं रख रहा हूं, लेकिन डेफिनेटली कल मैं जो राजीव शर्मा ने जो प्रश्न भेजे हैं वो आपके सामने रखूंगा। और खासकर राजीव ने जिस तरीके से प्रश्न भेजे हैं इसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं। और उन्होंने स्पेशली लिखा है कि मेरे ये जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे बैच के स्टूडेंट रहे हैं उन सभी को बता दिया जाए, तो डेफिनेटली राजीव मैं ये काम करूंगा। तो मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। बहुत से ईमेल हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उन सबके प्रति बहुत बहुत आभार। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, कुमारी किरण ज्योति नई दिल्ली से, प्रियांशु मिश्र, मनीष नागुलवार पुणे से, रघुवीर सिंह, विजय परमार पालीताना गुजरात से, कुमार राज, संदीप कुमार, अभिषेक सोनी, विशाल केशरी इलाहाबाद से, जितेंद्र शाह अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल से, कैलाश कश्यप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, नफीस अहमद गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, अभिषेक वर्मा, अबू रैहन गोपालगंज बिहार से, हंसराज साहू बूंदी राजस्थान से, अजय आनंद, नम्रता भारती गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, नीरज धाकड़ इलाहाबाद से, कुमार अमरदीप नालंदा से, योगेश साहू कोरबा छत्तीसगढ़ से, राजू राम जोधपुर से, प्रदीप कुमार गिरिडीह झारखंड से, इंद्रजीत कुमार महतो चंपारण से, विष्णु प्रभाकर, कृष्ण मीना आईआईटी रुड़की से, कृपेश कुमार अहमदाबाद से, पायल गिरी, मोनिका पटेल शहडोल मध्य प्रदेश से, तनुप्रिया सिंह दिल्ली से, अरविंद कुमार लोधी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से, रुखसार मासूम नई दिल्ली से और मयंक त्रिवेदी हरदोई से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी और कल फिर हम लोग इंटरव्यू के बारे में जो क्वेश्चंस भेजे गए हैं उनके बारे में, उनको आपके सामने रखते हुए मैं उसकी थोड़ी सी एनालिसिस और तैयारी के बारे में बातें करूंगा। अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।